शाम को एमा और जीनी दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर थीं और कुछ फाइलें चेक कर रही थीं। जीनी ने एमा से कोई बात नहीं की थी, वो लगातार उसके बदलते चेहरे को देख रही थी। तभी निक वहां आया जो थोड़ा गुस्से में था। निक ने आते ही कहा, हेलो एमा, क्या तुम फ्री हो? एमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ फ्री हूँ, बोलो कुछ काम है क्या? उसने रूखा जवाब दिया। निक ने जीनी की तरफ देखा और बोला, जीनी रूम बंद कर। जीनी गई और रूम बंद कर दिया। उसके रूम बंद करते ही निक एमा से बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुम सुबह मेरे रूम में आई थी, मुझसे मिले बिना चली गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ जीनी, इसे यहाँ से चले जाने को बोलो, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत घूम रहा है। एमा ने हाथ ऊपर कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। जीनी ने दरवाजे के पास से ही कहा, एमा कैसे बात कर रही हो तुम? निक तुमसे उम्र में भी बड़ा है और पोस्ट में भी। निक एमा के सामने खड़ा हुआ और दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोला, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी? जो भी है सब मुंह पर बताओ ना। एमा नजरें चुराने लगी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिसे डेट करना है करो, जिसके साथ सोना है सो, कुछ भी करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तुम जिसे आली की जगह देनी है दो। ओह, तो ये बात है। निक घूमा और पलटकर दूसरी तरफ देखा, फिर वो वापस उसकी तरफ हुआ और बोला, मेरे दिल में उसे लेकर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, निक ने कहा और पलटकर अपनी जगह से ही हट गया। एली की जगह कोई नहीं ले सकता, उसने अपनी जगह से हटने के बाद कहा, तुम नहीं जानते हो उस लड़की के इरादे, तुम्हारे इंटेंशन नहीं है, मगर वो लड़की, एमा ने अपना चेहरा ऊपर करके कहने की कोशिश की। वो निक को ये बताने वाली थी कि प्रियल उसे पसंद करती है, मगर जीनी इस बात को समझ गई थी। उसने एमा को बीच में ही टोका और कहा, एमा तुझे अभी भी प्रियल से प्रॉब्लम है? अब तो उसने खुद को इनोसेंट भी प्रूव कर दिया, कम से कम अब तो उसे लेकर ऐसा कुछ भी मत सोचो। एमा अपनी बात से भटक गई और बोली, मुझे उससे प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम तो निक को होनी चाहिए, क्योंकि वो उसे आली की जगह देगा, और ये बस मेरी थिंकिंग है। निक के सब्र का बांध टूटा और उसने गुस्से से मुड़कर एमा को कहा, देन गो हेल विद योर थिंकिंग, और इतना कहकर गुस्से में वहां से चला गया। निक के जाते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया, जो कुछ देर के लिए रहा। फिर जीनी एमा के पास आई और बोली, एमा तुझे उसका दर्द और अकेलापन नहीं दिखता यार? एमा रूखे से मुंह के साथ बोली, अब तो बहुत खुश है वो, देखा नहीं वो खुद को बदल रहा है। हाँ, और तुझे बढ़िया नहीं लग रहा? हद है, मैं उसका बुरा चाहूंगी। तो तुझे उसका दुख नहीं दिखता? तुझे पता है वो सारा दिन पागलों की तरह काम करता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि वो वर्कहॉलिक है। हंसी आती है मुझे तुम पर, वर्कहॉलिक है? सीरियसली, तुम्हें लगता है तुम उसे समझती हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काम इसीलिए करता है क्योंकि उसे डर लगता है अगर कहीं फ्री बैठा या अकेला रहा तो उसे फिर से हालिया पावती आंटी की याद ना आ जाए। जब भी उसे इनकी याद आती है तब वो अंदर से टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, खुद को दर्द में महसूस करता है। ये नहीं हो सकता, उसने कभी नहीं बताया था। बताया तो मुझे भी नहीं, मगर मैं उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती हूँ ये बात। जीनी कुछ देर के लिए रुकी और फिर एमा से पूछा, आखिर किस बात का डर है तुझे एमा? तुम क्यों निक की लाइफ में किसी और को नहीं आने देती? एमा हड़बड़ा गई, वो मिस्टर दत्ता, वो कहीं कुछ कर ना दे। और तुम कब उससे डरने लगी? तुम्हें पता है ना हम उसे दत्ता की साजिश जानते हैं, मगर इसके बावजूद हम में से कोई नहीं डरता, जीनी ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। बहाने बनाना बंद करो एमा और निक को आगे बढ़ने दो, कब तक वो अकेला रहेगा? मगर मैं नहीं चाहती कोई आली की जगह ले। तो तुम क्या चाहती हो, निक जिंदगी भर घुट घुट कर मरता रहे? नहीं, मैं ये भी नहीं चाहती, एमा रोने लगी। तो तुम क्यों उसकी जिंदगी में किसी और को नहीं आने देती? एमा कुछ देर तक रोती रही, फिर अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाई थी। मुझे ये समझना चाहिए निक सिर्फ एली की यादों के सहारे नहीं रह सकता, उसे आगे तो बढ़ना होगा। फिर उसने हल्की गहरी सांस ली और जीनी की तरफ देखकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान देते हुए कहा, ओके मैं बात करूंगी निक से इस बारे में। जीनी रोब से बोली, और सॉरी कौन बोलेगा? एमा हंसी और कहा, हाँ वो भी बोल दूंगी। निक एमा की बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने के बाद वो इंस्टीट्यूट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर एली की कब्र की ओर चला गया। रास्ते में उसने कुछ फूल भी ले लिए थे। वो एली की कब्र के पास पहुंचा और वहां घुटनों के बल बैठकर कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी निभाने में। फिर भी एमा, ट्रस्ट मी एली, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं क्या करूं, मेरा दिल बस मेरे पास नहीं रहता, उसके पास होता हूं तब पता नहीं क्यों लगता है मैं तुम्हारे ही साथ हूं। पता है अली, वो कुछ हद तक तुम्हारे जैसी है, उसकी आदतें, उसका मासूमियतपन, मानो वो कोई और नहीं बिल्कुल तुम ही हो। शायद यही वजह है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ये सच्चाई मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, मगर मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके पास में होने से मुझे सुकून मिलता है, तुम्हारी कमी दूर होते हुए लगती है, मगर पता नहीं मैं तुम्हारी बहन को ये कैसे बता पाऊंगा। ये कहकर निक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी जगह सिर्फ तुम्हारी रहेगी, ये मैं किसी और को नहीं दूंगा। फिर वो खड़ा हुआ और उसने फूल कब्र पर रख दिए। फूल कब्र पर रखने के बाद वो अपने घर की ओर चल दिया। अपने नॉर्मल घर पहुंचते ही उसने घर का दरवाजा खोला तो उसे सामने एमा दिखाई दी, जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही निक पहले तो खामोश रहा और फिर धीमे कदमों से उसकी ओर जाता हुआ बोला, अब क्या बाकी रह गया था एमा जो सुनने दोबारा आई हो? जो भी कहना होता है वो एक ही बार में कह दिया करो, तुम्हारी तकलीफ देने वाली बात मुझसे बार बार सुनी नहीं जाती। एमा के चेहरे पर रोने वाले भाव आए और वो बोली, सॉरी निक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। एमा रोई और दौड़कर निक के गले लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने उसके बारे में ऐसा सोचा कैसे, वो बस मेरी दोस्त है यार, मैं अली की जगह उसे नहीं देना चाहता, निक ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। देखो मैं भी चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, बस प्रियल के साथ नहीं, पता नहीं मुझे क्यों वो लड़की पसंद नहीं आ रही। मैं क्या करूँ एमा, सच कहूँ तो पता नहीं क्यों क्यों मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, वो बिल्कुल एली जैसी है। हाँ मैंने भी नोटिस किया है उसकी कुछ आदतें एली जैसी हैं, और तो और कुछ बातों पर तो रिएक्ट भी बिल्कुल एली की तरह करती है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो ठीक नहीं लगती। मैं भी यही सोचता हूँ, दत्ता के साथ उसके संबंध होने पर तो काफी ज्यादा सोचा था, मगर फिर वो इनोसेंट प्रूफ हो गई, और कहीं इसमें भी तो दत्ता की कोई साजिश तो नहीं? फिर उसकी आदतें एली की तरह होना, वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा तो नहीं उठाना चाहता? नहीं, निक ने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, वो एली के बारे में नहीं जानती, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हाँ मैं सब उसे जरूर बताना चाहता हूँ।
शायद यही सही रहेगा, अगर वो सही है तो तुम उसे जो सच्चाई है वो बता दो, अगर उसे कहीं और से पता चला तो वो तुमसे, कहीं ऐसा ना हो वो तुमसे दूर चली जाए। बाकी मुझे वो सही नहीं लगती, मगर मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। एमा अलग हुई और अपने चेहरे पर खुशी दिखाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसकी बात सुनकर निक को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। दोनों ने साथ में और भी कई बातें की। मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। मिस्टर जॉनसन शक्ल से ही खतरनाक आदमी लग रहे थे, खतरनाक और चालाक भी। गंजे सर वाले मिस्टर जॉनसन कोट पैंट में मिस्टर दत्ता के सामने बैठे थे। मिस्टर दत्ता ने मिस्टर जॉनसन से कहा, मतलब दो दिन और निक का खेल खत्म। मिस्टर जॉनसन मुस्कुराए और बोले, वैसे तो तुम बेवजह डर रहे हो, निक से हमें कोई खतरा नहीं है, मगर फिर भी तुम चाहते हो वो दुनिया में ज्यादा दिन ना जिए, तो हाँ बस दो दिन और फिर निक का खेल खत्म। आपने इसके लिए पूरी तैयारी तो की है ना? आपको मुझ पर शक है क्या? बिल्कुल नहीं, दत्ता के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। मैं एक बार के लिए ऊपर वाले पर शक कर सकता हूँ, मगर आपको चेक करूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। दोनों ने अपने बीच मौजूद कांच की टेबल पर रखे वाइन के ग्लास को उठाया और आपस में चीयर्स किया।